नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादु याजो। उत्तर प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण की चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। आज विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने भाजपा एनडीए की अच्छी नीयत और नीतियों के कारण तीसरी बार सरकार बनाने का फैसला किया है। श्री मोदी ने दावा किया कि वे देश के गरीबों, दलितों और पिछड़े लोगों के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अन्य वंचित समूहों के लिए आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भीषण गर्मी की स्थिति जारी है। लगातार रेड ऑरेंज अलर्ट के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिन से तीन दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर में भी तापमान बढ़ रहा है और शनिवार दोपहर को ईटानगर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुजरात में राजकोट शहर के नाणा मावा रोड पर स्थित टीआरपी गेम जोन में कल शाम भीषण आग लगने से अब तक 35 लोगों की मारे जाने की खबर है। इनमें 9 बच्चे हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ गेम जोन में छुट्टियां मनाने आए थे। आग लगने के बाद 5 किलोमीटर दूर से धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। ये बात सामने आई है कि गेम जोन के प्रशासकों ने वीकेंड का फायदा उठाते हुए 99 रूपये की स्कीम शुरू की, जिसमें विजिटर्स को लुभाने के लिए प्रवेश शुल्क 500 रूपये से काफी कम कर दिया गया और नतीजा ये हादसे का कारण बन गया। आग लगने के समय गेम जोन में लगभग 300 लोग जमा हो गए थे। केवल एक सीढ़ी उपलब्ध होने के कारण दूसरी और तीसरी मंजिल पर लोग फंस गए, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ गई। शनिवार को दिल्ली के शाहदरा में एक बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि अस्पताल में 12 नवजात शिशु भर्ती थे और आग लगने से पहले ही एक की मौत हो चुकी थी। सभी 12 नवजात शिशुओं को अन्य लोगों की मदद से अस्पताल से बचाया गया और इलाज के लिए पूर्वी दिल्ली एडवांस एनआईसीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि अस्पताल में 7 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा है। नाहरलगन पुलिस ने बताया कि बिहार के वैशाली जिले के मिर्जापुर गांव से 25 वर्षीय अपहृत महिला को बचाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाहरलगुन ने एसपी मिहिन गांबो ने बताया कि आरोपी की पहचान बिहार के मिर्जापुर निवासी पिंटू राय के रूप में हुई है, जिसे 22 मई को बिहार पुलिस की सहायता से नाहरलगुन थाने की पुलिस की एक विशेष टीम ने गिरफ्तार किया। खबर है कि आरोपी ने पीड़ितों को धोखे से बिहार बुला लिया था। एसपी गांबो ने बताया कि बचाई गई महिलाओं को पूरी तरह से मेडिकल जांच के बाद स्वस्थ अवस्था में उसकी जैविक मां को सौंप दिया गया है। भारतीय नौसेना ने चक्रवात रेमल को देखते हुए तत्काल और प्रभावी सहायता के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस चक्रवात के आज रात पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप और बांग्लादेश में खेपू पाड़ा के बीच टकराने की संभावना है, जिसके कारण भूस्खलन हो सकती है। भारतीय नौसेना ने प्रभावित आबादी की सुरक्षा और बचाव के लिए आपदा राहत और चिकित्सा सहायता सामग्री वाले 2 जहाज तैयार किए हैं। पश्चिम बंगाल प्रशासन व्यापक राहत और पुनर्वास उपाय कर रहा है। तूफान के रास्ते में आने वालों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग ने चक्रवात के दौरान 27 से 30 मई तक भारी वर्षा और आंधी तूफान की अनुमान जताई है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने कहा कि विरासत का सटीक और पर्याप्त दस्तावेजीकरण राज्य के सांस्कृतिक लोकाचार को जीवित रखने की कुंजी है। अकादमिक जगत में आदिवासी सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाने पर जोर देते हुए प्रोफेसर कुशवाहा ने कहा कि लोक कथाओं के साथ साथ सांस्कृतिक एनेक्डोट्स का दस्तावेजीकरण और विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग करके उन्हें ज्ञान की सामान्य धारा का हिस्सा बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कुशवाहा शनिवार को आरजीयू में सांस्कृतिक शोध और प्रलेखन केंद्र द्वारा आयोजित टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द गालो ट्राइब पर परामर्श कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।